أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نظام اعمال کا آج آخری سیشن ہوگا، اور جو دو سیشن سے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کس طرح اور کن اوقات میں، کن ٹائمز میں ہمارے اعمال ائمہ علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور آج ہم تین احادیث اور دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سیشن کو کلوز کریں گے، اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے. فی الحال اگرچہ ٹاپک بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے، تقریباً شاید 50 احادیثیں موجود ہیں اسی موضوع کے اوپر، لیکن ابھی تک جو احادیثیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 10 احادیثیں، اس کو سلیکٹ کر کے پھر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. لیکن اکثر احادیث کے اندر یہی کامن باتیں ہیں، کامن مطالب ہیں جو پیش آپ کے سامنے کی گئی ہیں. ایک حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرضا. آپ دیکھیں، عبد الرضا، امام رضا علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام ہے عبد الرضا، اور وہ فرماتے ہیں کہ قلت للرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا، ادعو اللہ لی ولأہل بیتی، آپ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے. قال، امام نے یہاں پر بیان کیا، جواب دیا کہ اولست افعل، کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، تم لوگ کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں؟ واللہ ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم، خدا کی قسم تمہارے اعمال اور تمہارے خانوادے کے اعمال اور تمہارے، یعنی تم شیعوں کے اعمال، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فی کل یوم، پورا دن، لمحہ بلمحہ، فی کل یوم و لیلت، دن میں بھی اور رات میں بھی، یعنی لمحہ بلمحہ، 24/7، 24 گھنٹے، لمحہ بلمحہ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو امام نے یہ سب سے پہلا، دو باتیں یہاں پر امام نے مطالب بیان فرمایا. ایک، سب سے پہلا کیا تھا جواب کا حصہ، اولست افعل، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تم لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں؟ آپ دیکھیں امام اپنے شیعوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم جو شیعہ ہیں امام علیہ السلام کے، کس نگاہ سے امام کو دیکھتے ہیں؟ آیا ہم یہی نگاہ امام کی نسبت رکھتے ہیں جو امام ہماری نسبت رکھتے ہیں؟ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ دائماً محشور ہیں، ہم امام کے ساتھ 24 گھنٹے محشور ہیں، ہر لمحے امام کے ساتھ، امام کی نگاہ کے اندر ہم، امام کی دید کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے، اس بات کا یقین ہو جائے، تو انسان کا ہر عمل، بلکہ اس کی ساری زندگی ولائی ہو جائے گی، اس کی ساری زندگی ولائی ہو جائے گی. اور یہ اس حدیث کے ذریعے امام ہمیں امام شناسی اور امامت کا عملی درس دے رہے ہیں. ہم نارملی امامت کہاں پڑھتے ہیں؟ عقائد کی کتابوں میں. لیکن وہ جو ہم عقائد کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ پریکٹیکل امامت نہیں ہے، وہ تھیوریٹیکل ہے، وہ مفہومی ہے. مفہوم یعنی تھیوری، تھیوریٹیکل امامت پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر امام علیہ السلام ہمیں عملی اور پریکٹیکل امامت سکھا رہے ہیں کہ یہ امام ہوتا ہے تمہارا، کہ امام تمہارے ساتھ دائماً محشور ہے، ہر لمحے تمہاری زندگی کے اندر اس کا دخل ہے. بس اب آپ یہ دیکھیں، اس نگاہ سے اگر، اب اس دید سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ان موضوعات کو دیکھیں، اس دید سے ہم اپنے امام کو دیکھیں، تو یہاں پر नतीजा हम ये ले सकते हैं कि शिया कि क्यों शिया के अंदर और शियत के अंदर एक अकीदा ये रखा गया है और ये मौजूद है ये अकीदा कि क्यों शियत के अंदर इमाम को जिंदा और हई होना चाहिए, क्योंकि इमाम वो होता है जो अपने पैरोकारों के साथ हमेशा महशूर हो, उनकी तमाम हाजात को पूरा करता हो, उनकी तमाम मुश्किलात को हल करता हो और उनको हिदायत की जानिब, हिदायत के रास्ते की जानिब हमेशा मशगूल रहता हो। ये इमाम का काम है, प्रैक्टिकल काम है इमाम का। और लिहाजा अगर इस निगाह से हम इमाम को देखें तो हमारे हर अमल, हमारा हर अमल इमाम के जरिए सुऊद करेगा, सुऊद यानी परवाज करेगा। पहले भी बात हुई थी कि अमल इंसान जब अंजाम देता है तो कोई जुदा चीज नहीं है, रात गई बात गई वाला मामला नहीं है कि मैंने अगर 2 दिन पहले एक अमल अंजाम दिया है अब उस अमल का मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि हर अमल मेरे इमाम को पेश किया जा रहा है और वो अमल अगर अमल सालिहा हो, अमल हसना हो, तो वो अमल हसना इमाम के तवस्सुत से उस आलम मलकूत में परवास कर रहा है और उसके आसार और उसके इफेक्ट्स इस दुनिया में मुझे देखने को मिलेंगे। बस ये हमारी निगाह होनी चाहिए अमल की जानिब। अब यहाँ पर एक जालिब और बेहतरीन वाकया है कि मरहूम आगा सैयद अबुल हसन इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है ये वाकया कि जो यमनी शिया हैं जिनको जैदी शिया कहा जाता है, वो हमेशा जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जियारत नजफ में, उनके मरकज और उनके हरम की जियारत के लिए आया करते थे। और एक साल ऐसा पेश आया कि जब वो आए तो उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की कि हम चाहते हैं कि सैयद अबुल हसन इस्फहानी की जियारत करें और उनसे कुछ बातचीत करें, गुफ्तगू करें। सैयद अबुल हसन इस्फहानी ने कहा कि ठीक है, उनको आने दें, उनसे मुलाकात करते हैं। अब उस जैदी शिया का जो ग्रुप था कारवान का, उसमें एक आलिम भी मौजूद था, उनका आलिम है जैदी, उसने उस गुफ्तगू में एक सवाल किया सैयद अबुल हसन इस्फहानी से और पूछा कि क्यों शिया इसना अशरी के अंदर इमाम का हई होना जरूरी है, क्यों शिया इस बात के कायल है कि इमाम हतमन जिंदा हो। सैयद अबुल हसन इस्फहानी ने जवाब दिया कि ये इस वजह से है क्योंकि हम अपनी मुश्किलात के अंदर अपने इमाम से रुजू करते हैं और उनसे जवाब भी लेते हैं, वो हमारी मुश्किलात भी हल करते हैं। तो आलिम जैदी ने कहा, अजाब, ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि वाकयान, क्या वाकयान ऐसा होता है कि आप इमाम की तरफ रुजू करते हैं और उनसे जवाब भी लेते हैं। मरहूम सैयद अबुल हसन इस्फहानी का बिल्कुल ऐसा ही है। आलिम जैदी ने यहां पर कहा कि मुमकिन है कि आप भी हमारे लिए कोई वक्त ले लें, कोई टाइम ले लें कि हम भी आपके इमाम के महजर में आए और उनसे कुछ सवालात करें। अब यहां पर अजीब, सैयद अबुल हसन इस्फहानी ने बिल्कुल यानी 100% यकीन के साथ कहा, बिल्कुल मैं आपके लिए वक्त ले लेता हूं इमाम से कहकर। तो वहां पर जो सैयद अबुल हसन इस्फहानी के जो दोस्त अहबाब और शागिरदान बैठे हुए थे वो ताज्जुब से निगाह कर रहे हैं कि ये इन्होंने क्या कह दिया, ये इन्होंने कैसे वादा दे दिया उनको और ये अब कैसे होगा। ये 2-3 दिन बाद सैयद अबुल हसन इस्फहानी ने एक शख्स को भेजा उस आलिम जैदी के पास कि तुम जाओ और उस आलिम जैदी को कहो कि अगर इमाम से मिलना चाहते हो तो फला दिन फला टाइम पर वादी सलाम में आ जाना। वो शख्स गया और आलिम जैदी को कहा कि और वहां पर तुम आ जाना वादी सलाम में। अब सैयद अबुल इस्फहानी वहां पहुंचे हुए थे वादी सलाम में, वो आलिम जैदी भी वहां पर आ गए और सैयद अबुल हसन इस्फहानी से मुलाकात हुई। वहां पर इन्होंने कहा उस आलिम जैदी से कि तुम इस रास्ते से जाओ और इंशाल्लाह इमाम से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। तो आलिम ज़ैदी ने कहा कि साथ चलते हैं। सैयद अबुल हसन इस्फहानी ने जवाब दिया कि मैं अभी ही इमाम की खिदमत से आया हूँ यहाँ पर, और मैंने अपने सवालात पेश किए और इमाम ने मेरे सवालात के जवाब दिए। अब तुम जाओ इस रास्ते से। ये आलिम ज़ैदी जाता है और मुलाकात होती है इमाम से, और 1 या 2 घंटे बाद, जिससे नकल हुआ है ये वाकया, उसमें ये आया कि 1 या 2 घंटे बाद वो आलिम ज़ैदी वापस आता है मुलाकात करके, और सैयद अबुल हसन इस्फहानी के कदमों में पड़ जाता है और ये जुमला कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि हतमन और यकीनन इमाम को हई और जिंदा होना चाहिए। अब ये यकीन जो इस आलिम ज़ैदी के दिल में आया है, उतरा है, अगर हमें भी यकीन हो जाए कि हम 24 घंटे अपने इमाम के साथ महशूर हैं, तो क्या इमाम का गायब होना कोई माना रखेगा? क्या इमाम हमारे लिए गायब होंगे? क्या गैबत कोई माना देता है यहां पर? बल्कि इस वाकये से और इमाम रजा अलैहिस्सलाम की उस हदीस से ये मालूम होता कि इमाम गायब नहीं है, इमाम हाजिर हाजिर है। फिर रावी, यानी रावी का नाम क्या था, अब्दुल रजा, वो फरमाते हैं कि इमाम ने जब ये जुमला कहा कि तुम्हारे आमाल हम पर पेश किए जाते हैं, फी कुल यौमिन व लैलतिन, तो रावी कहता है, फस्तअज़म तु ज़ालिक, मुझे शर्म आई और मेरे ऊपर सख्त और गिरान गुजरा इमाम की ये बात। अब ये एक हदीस थी। एक और हदीस में मुहम्मद इब्ने मुस्लिम और ज़ुरारा नकल फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम से, और कहते हैं कि सअलना, हमने पूछा अबा अब्दुल्ला से, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, कि उन यानी आमाल के बारे में कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किए जाते हैं। इमाम ने फरमाया, माफी ही शक कौन, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे आमाल पेश किए जाते हैं। फिर इमाम ने सुम्मा तला हाज़िहिल आया, इमाम ने वही सूरह बकरा की आयत नंबर 105 की तिलावत की के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। और इस आयत को तिलावत करने के बाद इमाम ने ये कहा, ये फरमाया कि इन्ना लिल्लाही शुहदा फी अर्ज़, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इस जमीन में कुछ शाहिद हैं, शुहदा हैं, यानी गवाही रखने वाले मौजूद हैं खुदा के इस जमीन में। आप ये देखें, यहां पर एक पॉइंट है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि इंसान ने अमल अंजाम दिया है और उस अमल की मूवी, उसकी या पिक्चर या उसकी कोई फिल्म इमाम की खिदमत पे पेश की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि आप देखें, जब एक अमल की अगर फिल्म, आप फॉर एग्जांपल कोई किसी की मूवी बनाए, किसी के सामने मोबाइल रखकर, फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी रख दें, ठीक है, आजकल तो सीसीटीवी कैमरास पहले दुकानों के बाहर होते थे, अब तो घरों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं। अब इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए क्या होता है, मुख्तलिफ लोगों के अमाल को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसी कैमरा के अंदर एक खामी है। वो क्या है, वो ये, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा किसी बैंक के अंदर चोरी होती है और सब कुछ कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उस कैमरा के अंदर अगरचे पूरा उस बैंक की रॉबरी का सीन रिकॉर्ड किया गया है, सब कुछ नजर आ रहा है उस वीडियो फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, वो कैमरा बावजूद इसके कि बहुत ही जुजियात के साथ रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन दकीकन और तमाम वो दकाइक, तमाम वो छोटी छोटी जुजियात फिर भी उस कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। यानी उस अमल के पीछे क्या मोटिवेशन था और उस अमल के पीछे जो मानवी और स्पिरिचुअल जो मोटिवेशंस थे उस चोरी के, वो तो रिकॉर्ड नहीं हुए, सिर्फ फिजिकल अमल को रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो बिहाइंड द सीन जो उस अमल के जो असरात हैं आलम हस्ती के अंदर, उस बैंक रॉबरी को अंजाम देने वालों के जो आमाल हैं जो उस फिल्म के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं, उसके जो असरात आलम हस्ती में पड़े हैं, वो तो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इमाम अलैहिस्सलाम को जो आमाल पेश किए जाते हैं उस सीसीटीवी कैमरा की तरह नहीं है कि उसकी जो डीवी टेप है उसको और मेमोरी कार्ड है वो इमाम की खिदमत पे, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अमल उस तमाम दकाइक और जुजियात समेत, उसके आसार समेत इमाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। ये एक पॉइंट। दूसरा, आप देखें इस आयत के अंदर क्या लफ्ज आया है, कुल अमलू फसयरल्ला सयरल्ला, यहां पर फेल है, एक्शन वर्ब क्या है, यरा, यरा यानी देखना, रुयत करना, मुशाहिदा करना। यहां पर ये नहीं आया कि आलिम अल्लाह, ये नहीं आया कि खुदा ने जाना तुम्हारे अमाल के बारे में, बल्कि खुदा ने देखा तुम्हारा अमल। जानना और देखना जमीन आसमान का फर्क है। देखना किसी चीज को जानने से ज्यादा दकीक है, सही है। आपके बारे में, फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, या आप घर में बैठे हुए हैं, आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल की फोटो है, अब ये मोबाइल की फोटो आपके जहन में आ गई है, ये प्रोसेस है जो हर इंसान के जहन में ये तय होता है कि आप कोई भी चीज देखें उसकी फोटो आपके जहन में आ जाती है। लेकिन अब आप खुद बताएं ना, ये फोटो जो मेरे जहन में है आपके जहन में, ये ज्यादा अजीम है, दकीक है, या खुद उसको अपनी आंखों से देखना ज्यादा अजीम बात है, ज्यादा दकीक बात है? जाहिर सी बात है, देखना ज्यादा दकीक है, मुशाहिदा करना ज्यादा दकीक है। लिहाजा इस आयत में देखें खुदा ने क्या ताबीर इस्तेमाल की है खूबसूरत, फसयरल्लाहु अमलकुम, खुदा तुम्हारा अमल देख रहा है, रसूल खुदा तुम्हारे अमल को देख रहे हैं, सही, मेमोरी कार्ड को नहीं देख दिया जा रहा रसूल की खिदमत में, हमारे आमाल का, फोटो और फिल्म नहीं बताई दी जा रही रसूल को, और मोमिनून अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे आमाल को देख रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा दकीक है, वो क्या है कि सिर्फ अमल को पेश नहीं किया जाता। आप देखें कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें आया है कि जा अबिल हसन, एक शख्स आया है अपने हसन अमल के साथ, या एक और जगह ताबीर आई है, आप देखें जहां पर अमल साले के बारे में बात हुई है हमेशा यह आया ईमान व अमल साले, लेकिन एक और ताबीर कुरान के अंदर आई है वो ये है कि अल्लज़ीना अमलू बिस्सय्यात, वो लोग जो सय्यात को अंजाम देते हैं, यानी इस ताबीर में आप देखें आमिलू अमल प्लस अल्लजीना, वो लोग जो इस अमल को अंजाम देते हैं, यानी अमल के बारे में बात आई है और आमिल के बारे में बात आई है। आमिल कौन है? जो अमल अंजाम देने वाला है, आमिल फाइल, जो अमल अंजाम देने वाला है उसको आमिल कहते हैं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को जब हमारे आमाल पेश किए जाते हैं, फकत आमाल और अमल नहीं बल्कि अमल प्लस आमिल, सही, देखे कितनी दकीक बात है ये, कितनी अजीम बात है ये, यानी हम खुद इमाम को पेश किए जा रहे हैं, हमारा वजूद हमारे आमाल समेत इमाम की खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये तो बहुत संगीन मामला हो गया। अब इस निगाह से आया हमारे अंदर वो प्रिवेंशन और बुरे आमाल की निस्बत मुतनफिर होना, नफरत ईजाद होना, ईजाद नहीं होता, बिल्कुल होना चाहिए। अब इस निगाह से अगर हम ये निगाह और ये सोच और ये व्यू पॉइंट, ये दीद हमारे जहनों में 24 घंटे हो, तो देखें, ऑटोमेटिकली हम बुरे आमाल की निस्बत एक बार नहीं बल्कि 10 दफा सोचेंगे, बल्कि 1000 दफा सोचेंगे। सही, तो ये निगाह हम कोशिश करें अपने अंदर पैदा करें इंशाअल्लाह। अब आखिरी हदीस जो मैं आपके सामने इस पूरे मौजू के लिए इख्तिताम के तौर पर नकल करूंगा, वो है दाऊद रिकी रहमतुल्लाह अलैह की, जो नकल फरमाते हैं और कहते हैं कि दखल तो आला अबी अब्दुल्ला, मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और मैंने उनसे कहा कि, बल्कि हाँ, फकाल अली, इमाम ने दाऊद से कहा, फकाल अली या दाऊद, ए दाऊद, अमालकुम उरिज़त अलैया यौमल खमीस, ए दाऊद तुम्हारे अमाल उरिज़त अलैया, मुझ पर पेश किए जाते हैं, मुझे दिखाए जाते हैं यौमल खमीस, जुमेरात का दिन, जुमेरात के दिन में, थर्सडे, फरअईतु लका फीहा शैअन, तो मैंने तुम्हारे आमाल में एक ऐसी चीज देखी है कि जिसने मुझे फरहनी, जिसने मुझे खुश किया है। अब देखिए, ये सिर्फ दाऊद के आमाल तो पेश नहीं किए जा रहे, बल्कि हम सब के आमाल पेश किए जा रहे हैं इन रिवायात के अंदर, इन हादीस के अंदर। फकत वाकया बयान नहीं हो रहा है, बल्कि कायदा भी साथ में है, एक रूल भी यहां पर साथ में बयान हो रहा है, और ये कायदा तमाम इंसानों के लिए लागू होता है। खूब, अब यहां पर एक वाकया है, बहुत भी खूबसूरत वाकया है, कि अब क्यों, अब वो क्या अमल था कि दाऊद रिकी का वो अमल देखकर इमाम खुश हुए। यहां पर दाऊद रिकी खुद इस रिवायत के अंदर खुद इसकी वजह बताते हैं, वो बताते हैं वो अमल किया था। वो ये फरमाते हैं दाऊद रिकी के मेरे एक रिश्तेदार थे, और जो जो कि नासिबी थे, और नासिबी आप जानते हैं उनके लिए क्या अहकाम है। सही, नासिबी थे, और यानी बिलाखिर, और उनकी जो फैमिली थी, यानी मेरे जो रिलेटिव हैं नासिबी थे, उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही फकीर थे, मोहताज थे। जब मैं मक्का आया और इमाम को देखने के लिए, इमाम का दीदार करने के लिए, मैंने सोचा कि कुछ पैसे उनको देता हुआ आऊं मैं यहाँ पर। इमाम को ये अमल पसंद आया, फिर इमाम क्या फरमाते हैं यहाँ पर देखें, इमाम ने ये फरमाया, वज़ालिका, वो तुम्हारा अमल क्या था, सिलातुका लिइब्ने अम्मिक। अब ये जो उसने जो पैसे दिए, इसका नतीजा इमाम बता रहे हैं, यानी अमल क्या है यहाँ पर, नासिबी खानदान को, जो काफिर है उसको रिलेटिव रिश्तेदार है लेकिन नासिबी है, पैसे दिए और पैसे देकर इमाम से मिलने आया है। अब ये जो अमल है, पैसा देना और उनकी मदद करना, उनकी मोहताजी में उनको मदद करना, मदद देना, इस अमल के बारे में इमाम क्या फरमाने, देखें अमल के आसार, इन्नहु सयुमहकु अजलो, तुम्हारे, देखें बहुत ही अजीब नतीजा है, आप खुद ताज्जुब करेंगे, देखें इन्नहु सयुमहकु अजलो, तुम्हारा उसको पैसे देने का नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत जल्दी आ जाएगी, उसकी उम्र में कमी हो गई है। वला यनकुसु रिस्क का, वला यनकुसु रिस्क का, लेकिन तुम्हारे रिस्क में कोई कमी नहीं हुई है। क्या मतलब, यानी एक ताज्जुब की बात नहीं है, बिल्कुल एक, अगर हम पहली एक जाहिरी निगाह से देखें तो अजीब बात है, दाऊद ने अपने नासिबी रिश्तेदार की मदद की है। सही है, मोहताज थे वो, उनको पैसे देकर आया है। अब पैसे देने के नतीजा ये हुआ, इमाम ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पैसे देने के असर में उसकी उम्र कम हो जाएगी। यानी जब एक काफिर, जब मोमिन घर से एक मोमिन के पैसे एक काफिर के घर में जाते हैं तो उसकी उम्र कम हो जाती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह कि खुदा नहीं चाहता कि उस काफिर के आमाले गलत और गलत आमाल में इजाफा हो, और मोमिन के पैसे काफिर को देने का नतीजा नतीजा ये होता है कि मोमिन यहाँ पर दर हकीकत उसकी मदद कर रहा है कि वो अपने बुरे आमाल को कम अंजाम दे, लिहाजा उसकी उम्र कम हो जाती है। चूंकि उम्र कम हो जाती है लिहाजा जाहिर सी बात है वो जब इंसान की मौत आ जाती है तो गुनाह के आमाल अंजाम देने में कमी आती है, गुनाह अंजाम पाना खत्म हो जाते हैं। तो मोमिन जब पैसे देता है किसी काफिर को तो उसकी उम्र कम हो जाती है, यानी उसके गुनाह कम हो जाते हैं उसकी मौत के नतीजे में। अब अगर मोमिन किसी मोमिन की मदद करे, ये तो मोमिन का मदद करना था काफिर को, अगर मोमिन किसी मोमिन की मदद करे तो उसकी उम्र में इजाफा हो जाता है, उसकी उम्र में इजाफा हो जाता है। तो देखें ये आमाल के आसार हैं। अगर इन आसार को हम देखें जो खुद रिवायात के अंदर आए हैं, तो देखें अमल सालेह को अंजाम देने के हवाले से क्या शौक हमारे अंदर ईजाद होगा। लिहाजा उसकी मौत जल्दी आ जाती है और ये उसका असर है जो इमाम ने बयान फरमाया है। यहां पर आयतुल्ला बहजत रहमतुल्ला अलैह ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की और ये फरमाते हैं कि इंसान के आमाल सख्ती से कबूल होंगे। अगर हम सिर्फ इंसान के आमाल को ही देखें तो हमारे अमल की क्या औकात है? क्या जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या 100% तवज्जो होती है नमाज में? नहीं, अक्सरों की नहीं होती है। यानी हमारे आमाल की क्वालिटी 100% होती है कि उनको कबूल किया जाएगा खुदा की बारगाह में? नहीं। अगर अमल को सिर्फ अमल की निगाह से देखें, सिर्फ अमल को ही देखें तो कबूल होना मुश्किल है। हाँ, यहां पर आयतुल्लाह बहजत एक खूबसूरत राय हल बताते हैं। वो क्या है? अगर आप चाहते हैं कि कबूल हो इंसान के आमाल, आपके आमाल, हमारे आमाल, तो उसका तरीका है मोहब्बत। यानी अगर हमारे आमाल के अंदर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इजाफा किया जाए तो मोहब्बत उस अमल की रूह है, अमल जिस्म है, मोहब्बत रूह का काम अंजाम देती है। और अगर मोहब्बत ना हो तो अमल एक बेरूह की तरह, एक बिलाखिर बेजान की मानन रह जाएगा और ये फिर कबूल होना इसका मुश्किल है। लिहाजा अगर हम अपने, ये आयतुल्लाह बहजत का कोर्ट मैंने आपके सामने पेश किया कि अगर हम अपने आमाल के अंदर मोहब्बत को जमीमा करें, मोहब्बत को लेकर आए, फिलअप करें, तो अमल को कबूल करना आसान हो जाएगा। अब इसी हवाले से एक वाकया है इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की जानिब से और ये वाकया आपके सामने मैं पेश करके इंशाल्लाह इस सेशन को हम एंड करेंगे। हजरत ने फरमाया इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने कि सहराए महशर के अंदर जब कयामत बरपा होगी होगी वहां पर एक शख्स को लाया जाएगा मुहासबे के लिए और एक एक करके उसका अमल देखा जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारा गुना, ये तुम्हारा सैया, ये तुम्हारा सैया। यानी हर अमल में गुना 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 गुना, सैया 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 खूब। यानी उसका जो पूरा जो अमल का जो आमाल का जो तराजू है वो सैयात से और गुनाहों से पुर हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। उसको खिताब किया जाएगा यहां पर, खूब ये तो तुम्हारे सैयात थे, तुम्हारे हसनात कहां पर हैं? तो वो शख्स कहता है कि मुझे तो याद नहीं है मैंने कोई हसना अंजाम दिया हो। यहां पर खुदावंद सुबहान, खुदावंद रहमान फरमाते हैं कि अगर तुझे याद नहीं है, मुझे तो याद है, मैं नहीं भूला हूं तुम्हारे हसनात को, सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है। इसी वजह से एक और रिवायत के अंदर है कि इंसान जब हसनात अंजाम देता है, कोई अमले सालेह अंजाम देता है, फौरन भूल जाए फौरन कि मैंने कोई अमले सालेह अंजाम दिया था। क्यों? इस वाकये के लिए, ताकि ये उसके साथ पेश आए, ताकि यहां पर खुदा अपनी रहमत उसके ऊपर निछावर करे। देखें किस तरह से खुदावन ने फरमाया कि मैं तो तुम्हारे हसनात नहीं भूला हूं, अगरचे तुम भूल गए हो। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक कागज लाया जाएगा। और उस कागज को उस तराजू पर रखा जाएगा। नतीजे में पूरे तराजू का वजन इधर उधर हो जाएगा, उलट हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, मुकम्मल चेंज। यानी अगर सय्यात यहां पर थे जब इस कागज को रखा जाएगा, तो इस कागज का वजन इतना होगा कि सय्यात का वजन उसके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और फिर उससे कहा जाएगा कि जाओ, तुम जन्नत भी जा सकते हो और शफाअत भी कर सकते हो। अब यहां पर जो अहले महशर हैं वो ताज्जुब करेंगे, खुदा से पूछेंगे, खुदाया ऐसा कौन सा हसना था उसका, ऐसा कौन सा अमल था जिसका ये असर, इतना बड़ा असर। खुदा यहां पर फरमाएंगे कि ये शख्स बेदहकार था, मकरूज था, ये इसके ड्यूज थे किसी की निस किसी की जानब, किसको ड्यूज पे करने थे। लेकिन जब ये गया अपने ड्यूज को पे करने के लिए उस शख्स को, तो इसने, देखें अब बहुत गौर से सुने, ये है मोहब्बत को फिल करना अमल के साथ। जब वो शख्स गया, ये शख्स गया अपने ड्यूज को पे करने के लिए उस शख्स की जानेब, तो इसने उसको कहा कि मैं शौक से तुम्हारे पास आया हूं। ये नहीं कहा कि ये लो पैसे खुदा हाफिज, बल्कि कहा मैं शौक से, इश्तियाक से तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारे पैसे लौटाने। उस शख्स ने पूछा क्यों इतने शौक से, तो ये कहेगा, इसने कहा कि चूंकि तुम मुहिब अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम हो, चूंकि तुम मुहिब अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम हो, मैं इस शौक से तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम्हारे पैसे लौटाऊं। अब देखें, शौक और मोहब्बत को जमीमा करना, फिल करना और साथ ले आना अमल के साथ। और वो शख्स, सही है, वो जवाब में क्या कहता है, वो ये कहता है कि चूंकि तुमने मोहब्बत के साथ और मेरे अंदर मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम देखी है और शौक से मेरे पास आए हो, मैं भी तुम्हारे कर्जों से और ड्यूज से गुजर जाता हूं। मुझे तुम्हारे अब पैसे वाप मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए, बल्कि मेरे माल के अंदर अगर तुम्हें मेरे माल से मजीद कुछ चाहिए तो तुम ले सकते हो। अब आप देखें, मोहब्बत कयामत में अपना नतीजा दिखाती है। लिहाजा मैंने कहा ना, अमल को सिर्फ अमल देखें तो हमारी नमाजों की क्या औकात है, हमारी नमाजों की क्या हैसियत है। सही, हाँ, अगर हम इंसान कामिल होते हैं तो हमारी नमाजें कबूल होती हैं, कबूल होंगी, लेकिन हम तो इंसान कामिल तो नहीं है। अगरचे इंसान कामिल बन सकते हैं और हमें कहा गया है, बिलाखिर उस तरह से आसान नहीं है। अब इस सफर में हम जो आमाल अंजाम देते हैं, जो रोजे रखते हैं, माहे रमजान के अंदर जो नमाजें पढ़ते हैं, और हर नमाज में, बिलाखिर आजकल जो नमाजें हम पढ़ते हैं, तो उस नमाज के अंदर कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, और पता नहीं क्या क्या हमारी नमाजों के अंदर है, और महंगाई है, तो ये नमाजें बिलाखिर अगर जब पेश की जाएंगी खुदावंदे मुताल की खिदमत में कयामत के दिन, तो कैसे कबूलूंगी। लेकिन अगर इस नमाज के अंदर मोहब्बत भी हो और हर अमल के अंदर मोहब्बत भी शामिल की जाए, तो ये आसानी से कबूल की जा सकती है खुदा की बारगाह में, क्योंकि वो खुदा रहमान रहीम है। याफू अन कसीरन है खुदा, याफू अन कसीरन, ज्यादा अफ करने वाला, कुरान की आयत में यह है, याफू अन कसीरन। लिहाजा हम इस शौक से, इस मोहब्बत अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से अपने आमाल को अंजाम दें। और अगर इस मोहब्बत को देखें, आप देखें ये मोहब्बत कितना लुत्फ दिखाती है हमारे, हम शियों को, हम शियों के लिए। तो क्या ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर हम अमल ना सालेहा अंजाम दें, फिर भी इस कदर रहीम है खुदावंद मुताल और इस कदर करीम है अहलुल बैत अलैहिस्सलाम, फिर भी हमारी शफाअत करने को तैयार है हमारे गुनाहों के बावजूद। लिहाजा बेहतर नहीं कि हम अपने गुनाहों के बारे में सोचें और अंजाम देना छोड़ दें गुनाहों को, टाइम जाया करना छोड़ दें व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, और प्रोफाइल पिक्स, और पता नहीं क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, इंग्लिश में कहते हैं क्रैप, इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्रैप, ये सारे काम जो हम टाइम जाया करते हैं इसको कहा जाता है क्रैप। ऐसा ना हो कि हम कयामत के दिन हमारे आमाल के अंदर ये सारा क्रैप मौजूद हो और वहां पर फिर शर्मिंदगी होगी और बिलाखिर कयामत के नामों में से एक नाम भी है यौमे हसरत, फिर वहां पर हसरत होगी हमें। इंशाल्लाह खुदावंदे मुताल से दुआ है कि माहे शाबान के ये जो आखिरी औकात हैं, 2 या 3 दिन बचे माहे शाबान के इख्तिताम में, इससे हम बखूबी इस्तेफादा करें और अपनी जिंदगी को रिवाइज करें, रिव्यू करें और अच्छे आमाल और नेक आमाल और हसनात को अंजाम देने का मुहकम इरादा करें इंशाअल्लाह, और गुनाहों से पुश करें इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदाया हमारी आकिबत बखैर फरमाए, ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ताजील फरमाए और हमें उस हजरत के आमानों अंसार में से होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.